लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थ याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है पेंतेकोस्त महापर्व के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पेंतेकोस्त महापर्व के दिन स्वर्गीय रानी प्रार्थना हेतु जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi solennità di Pentecoste. Il Vangelo ci porta nel cenacolo dove gli apostoli si erano rifugiati dopo la morte di Gesù.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज पेंतेकोस्त महापर्व का सुसमाचार हमें अंतिम व्यारी की कोठरी में ले चलता है, जहां शिष्यगण यीशु की मृत्यु के बाद शरण लिए हुए थे। पास्का की संध्या को पुनर्जीवित प्रभु उनके दुख और भय की स्थिति में अपने को उनके बीच प्रस्तुत करते हैं और उनके ऊपर फूंकते हुए कहते हैं,
रिचेवेते लो स्पिरितो सांतो,
पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। इस भांति पवित्र आत्मा के उपहार से यीशु अपने शिष्यों में व्याप्त भय को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वे भय के कारण द्वार के अंदर बंद थे। वे उन्हें भय से मुक्त करते हैं, जिससे वे बाहर निकलकर सुसमाचार का साक्ष्य देते हुए उसकी घोषणा करें। संत पापा ने कहा कि हम उस पवित्र आत्मा पर थोड़ा चिंतन करें जो भय से हमें मुक्त करते हैं। उन्होंने कहा,
I discepoli avevano chiuso le porte, dice il Vangelo, per timore.
सुसमाचार हमें बतलाता है कि वे भय के कारण द्वार के अंदर बंद थे। यीशु की मृत्यु ने उन्हें झकझोर दिया था, उनके सपने टूट गए थे, उनकी आशाएं बिखर गई थीं। वे भय के मारे अपने में बंद हो गए थे। वे केवल घर के अंदर बंद नहीं थे, बल्कि वे अपने अंदर, अपने हृदय में बंद हो गए थे। संत पापा ने जोर देते हुए कहा कि वे स्वयं में बंद हो गए थे। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि कितनी बार हम अपने को अंदर से बंद कर लेते हैं, कितनी बार हम अपने जीवन की स्थिति के कारण, व्यक्तिगत परेशानी या पारिवारिक मुसीबत के कारण, उस कठिनाई के कारण जो हमें प्रभावित करती है, या उस बुराई के कारण जिसे हम अपने अगल बगल पाते हैं, अपने को बंद कर लेते हैं। क्या हम ऐसी परिस्थिति में अपने को धीरे धीरे खो देते और साहस के अभाव में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, और इस तरह हम शिष्यों की भांति अपने आप को अंदर से बंद कर लेते हैं, जो हमें चिंताओं के भावर जाल में अवरुद्ध कर देता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारा अपने में यह बंद होना तब होता है जब हम अपने मुश्किल के समय में भय को अपने में हावी होने देते और उसकी ऊंची आवाज को अपने में प्रबल होने देते हैं। अतः यह हमारा भयभीत होना है, भय जिसका सामना करने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं, जिसके कारण हम दैनिक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में अपने को अकेला पाते हैं। हम अपने को जोखिम में पड़ा, अपने को निराश, अपने लिए गलत निर्णयों को लेता हुआ पाते हैं। संत पापा ने कहा,
La paura blocca, la paura paralizza.
भय हमारे लिए रोड़ा उत्पन्न करता, हमें पंगु बना देता है, यह हमें अकेला कर देता है। हम दूसरों से भय के बारे में सोच सकते हैं, जो परदेशी हैं, जो हमसे भिन्न हैं, जो हमसे अलग सोचते हैं, और यहाँ तक कि हम ईश्वर से अपने को भयभीत पाते हैं। वे हमें सजा देंगे, वे हमसे नाराज हो जाएंगे। यदि हम इन गलत भयों को अपने जीवन में स्थान देते तो हम अपने को बंद कर लेते हैं, हमारे हृदयों के द्वार को, समाज के द्वारों को, यहाँ तक कि कलिसा के द्वारों को भी।
Dove c'è paura, c'è chiusura.
जहाँ भय है वहाँ सारी चीजें बंद हो जाती हैं, यह हमारे लिए सहायक नहीं होता है। संत पापा ने कहा, जबकि सुसमाचार हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के रूप में इसका एक समाधान प्रस्तुत करता है और वे हमारे लिए पवित्र आत्मा हैं। उन्होंने कहा कि वे हमें भय के कैद खाने से मुक्त करते हैं। जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, जिसके आने का त्योहार आज हम मनाते हैं, वे शिष्यों को अंतिम व्यारी की कोठरी से बाहर निकालते और बाहर दुनिया में ले जाते हुए पापों की क्षमा देने और सुसमाचार की घोषणा करने को अग्रसर करते हैं। हम इसके लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वे हमारे बीच से भय को दूर करते और हमारे द्वारों को खोलते हैं।
Ci fa sentire la vicinanza di Dio e così il suo amore scaccia il timore, illumina il cammino, consola, sostiene l'avversità.
पवित्र आत्मा हमारे संग ऐसा करते हैं, वे हमें ईश्वर के निकट लाते हैं, जिससे कि उनके प्रेम से हमारे भय दूर हो, हमारे मार्ग प्रशस्त हो, हमें सांत्वना मिले, हम विभिन्नताओं में एक बने रहें, हम अपने लिए, कलिसिया और पूरी दुनिया के लिए पवित्र आत्मा की मांग करें। एक नया पेंतेकोस्त हमारे बीच से भय दूर करे जो हम पर आक्रमण करता है, या हमारे बीच ईश्वरीय प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करे। अति पवित्र मरियम जो सर्वप्रथम पवित्र आत्मा से पूर्ण रही, हम सबों के लिए निवेदन करें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग स्वर्गीय रानी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnes tuus quae in
saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos
omnipotens
Deus
Pater
et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
अपनी स्वर्गीय रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने महान साहित्यकार अलेजांद्रो मंजूनी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनकी याद की। अपने लेखों में उन्होंने सबसे परित्यक्त लोगों के बारे में जिक्र किया कि वे ईश्वरीय करुणा में सदैव उनकी रक्षा में रहते हैं। वे कलिसिया के विश्वासी प्रेरितों द्वारा सदैव मदद किए जाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों की याद करते हुए प्रार्थना करने का आह्वान किया, जो लाखों की संख्या में तूफान के शिकार हुए हैं।
Invito a pregare per le popolazioni che vivono al confine tra Myanmar e Bangladesh, duramente colpite da un ciclone.
उन्हें अपना सामीप्य प्रदान करते हुए उन्होंने देश के नेताओं से आग्रह किया कि वे ऐसी परिस्थिति में मानवतावादी कार्यों में हाथ बटाएं। साथ ही उन्होंने उनके लिए कलिसियाई सहायता और एकात्मकता की अपील की। इसके उपरांत उन्होंने विभिन्न स्थानों से आए हुए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन किया। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने मई महीना की समाप्ति की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए विश्व के मरियम तीर्थों की याद की, जहां प्रार्थनाएं अर्पित की जाएंगी। उन्होंने धर्माध्यक्षीय धर्म सभा की सफलता हेतु प्रार्थना का निवेदन किया। संत पापा ने युद्धग्रस्त यूक्रेन को माता मरियम के हाथों में सुपुर्द करते हुए विश्व शांति की आशा व्यक्त की और अंत में अपने लिए प्रार्थना का निवेदन किया और उन्होंने सबों को रविवार ये मंगल कामनाएं अर्पित की और विदा ली।
Tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me.
पावन आत्मा आजाद
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। अफ्रीका डे के उपलक्ष्य में रोम में एकत्र विभिन्न अफ्रीकी देशों के बच्चों ने सोमवार को अपने अभिभावकों और कई अफ्रीकी राजदूतों सहित संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। बच्चों को इस मुलाकात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संत पापा ने स्मरण दिलाया कि 25 मई 1963 को अफ्रीकी संघ की स्थापना के स्मरणार्थ वार्षिक रूप से अफ्रीका डे या अफ्रीकी दिवस संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिवस स्वतंत्रता, विकास तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ साथ अफ्रीका की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती और गहराई से समझने हेतु संघर्ष का प्रतीक है। संत पापा ने बच्चों से कहा, मैं आपको अलग होने का साहस करने, उदारता, सेवा, पवित्रता, क्षमा, न्याय और सामान्य भलाई के लिए संघर्ष, गरीबों के प्रति प्रेम तथा सामाजिक मैत्री के सौंदर्य के गवाह बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस बात पर उन्होंने गहन क्षोभ व्यक्त किया कि इस समय प्रिय अफ्रीकी महाद्वीप आतंकवाद, खराब शासन, भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगारी, आप्रवास, समुदायों के बीच संघर्ष तथा साथ ही जलवायु एवं खाद्य संकट जैसी भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, इस संदर्भ में आप असहाय और निराश महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपका भविष्य अंधकारमय और संभावनाओं से रहित है। फिर भी आप युवा हैं और समृद्ध रूप से प्रतिभाशाली हैं। आपकी उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं, महान सपने हैं। आप उनका पीछा करें और अपने भविष्य को सरल एवं सुंदर बनाने का प्रयास करें। संत पापा ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप में से प्रत्येक से कहना चाहता हूं, अपने सपनों को कभी न छोड़ें, कभी भी पूरी तरह से एक बुलाहट को दफन न करें और कभी भी हार न मानें। उन्होंने कहा, आप यह याद रखें कि अफ्रीका की समृद्धि में से एक इसके युवा लोगों की तीव्र बुद्धि है। अध्ययन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मानव और समाज के अभिन्न विकास में योगदान करती है। बाल सैनिकों का स्मरण कर संत पापा ने कहा, मेरे विचार उन बच्चों के प्रति अभिमुख होते हैं जिन्हें बलात् सेना में भर्ती कर लिया जाता है और जो हर प्रकार के संघर्षों और उससे जुड़ी हिंसा के शिकार बनाए जाते हैं। बच्चों से उन्होंने आग्रह किया कि वे सैनिक बच्चों को कदापि न भूलें, वे उनके करीब रहें ताकि वे स्वतः को बहिष्कृत और परित्यक्त न समझें। पोलैंड से रोम आए बीमार बच्चों ने सोमवार को संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बच्चों से संत पापा ने कहा कि स्वतः को कभी भी वे अकेला न समझें, अपितु प्रभु येसु के प्रेम की याद कर अपनी बीमारी के बावजूद आगे बढ़ते जाएं। संत पापा ने बीमार बच्चों से कहा, मैं आपको देखकर अति प्रसन्न हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अति प्रिय बच्चों, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि आप ईश्वर के प्रेम के प्रेरित बने। संत पापा ने कहा, जीवन में आपकी यात्रा थोड़ी कठिन है क्योंकि आपको खुद अपने को ठीक करना है, बीमारी पर काबू पाना है या बीमारी के साथ जीना है और यह आसान कार्य नहीं है। जीवन में कितनी बार हम खुद को आगे बढ़ने की ताकत न होने की स्थिति में पाते हैं, तथापि आप कभी अकेले नहीं हैं। येसु हमेशा आपके पास हैं और वे आपसे कहते हैं, जाओ आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, क्या आप कलीसिया में और विश्व में ईश प्रेम के प्रेरित बनना चाहते हैं? आनंद और उत्साह के साथ उनके सवाल का आप प्रत्युत्तर दें तथा ईश प्रेम को अन्यों में बांटें। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में रविवार को पेंतेकोस्त महापर्व के उपलक्ष्य में ख्रीस्त्याग के अवसर पर प्रवचन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने स्मरण दिलाया कि पवित्र आत्मा शांति और एकता है, विभाजन नहीं। संत पापा ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि वर्तमान विश्व में हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, फिर भी हमारे बीच दरारें, विभाजन, मतभेद और वैमनस्यता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रभु येसु ने अपने पुनरुत्थान के बाद हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जो स्वयं शांति, मैत्री और एकता है। इसलिए हम प्रतिदिन विश्व में शांति और एकता के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। संत पापा ने कहा, आज हमारी दुनिया में इतना विवाद, इतना विभाजन है। हम सभी जुड़े हैं, फिर भी उदासीनता से बेहोश और एकांत से अभिभूत होकर हम खुद को एक दूसरे से अलग पाते हैं। इतने सारे युद्ध, इतने सारे संघर्ष, विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतनी अधिक बुराई में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारी शत्रुता को विभाजन की भावना से बढ़ावा मिलता है। विभाजन शैतान का कार्य है, जिसके नाम का अर्थ ही विभाजक है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वही शैतान सारे संसार को भटकाता है। उसके प्रलोभन से बचने के लिए हम सतत पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। संत पापा ने कहा कि पेंतेकोस्त के दिन से ही पवित्र आत्मा कलीसिया में क्रियाशील हैं। वे कलीसिया पर नियमों को थोपते नहीं, वे यीशु के प्रेरितों पर अवतरित होते तथा उनमें से प्रत्येक को विशिष्ट करिश्मे और कृपा का वरदान देते हैं। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा विविधता में एकता और सामंजस्य उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कलीसिया और उसके सेवकों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे विविधता में एकता की खोज करें तथा विभाजनों के बजाय मैत्री, सामंजस्य और शांति की स्थापना करें। इस समय रोम में जारी सिनेड अर्थात धर्माध्यक्षीय महासभा के संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि धर्माध्यक्षों की इस महासभा को दुनिया के एजेंडे के अनुसार अधिकारों की मांग और जरूरतों का दावा करने वाली संसद नहीं होना चाहिए, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुरूप विनम्र भाव से आगे बढ़ने वाली तीर्थयात्रा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ही कलीसिया का प्राण और सिनेट की संचालक शक्ति है, क्योंकि उन्हीं से कलीसिया और सुसमाचार प्रचार मिशन का शुभारंभ हुआ था। संत पापा फ्रांसिस ने बंगाल की खाड़ी में आए एक शक्तिशाली चक्रवात से प्रभावित लोगों के प्रति एकात्मता की अपील करते हुए अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे लोकोपकारी सहायता पहुंचाने वाली सुविधाओं की तुरंत बहाली करें। चक्रवात मोचा के प्रकोप ने म्यांमार और बांग्लादेश के बीच के क्षेत्रों में मौत और तबाही मचाई है। रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्र तीर्थयात्रियों के लिए स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पाठ के समय संत पापा ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि म्यांमार में हिंसा से भागकर अनिश्चित परिस्थितियों में बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थियों सहित 8 लाख से अधिक लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। तीर्थयात्रियों से संत पापा ने कहा, मैं आपको म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा पर रहने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना हेतु आमंत्रित करता हूं जो मोचा चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।